तो 14 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। पिछली बार रागानुगा भक्ति की चर्चा हमने शुरू की थी और संक्षेप में तीन शब्दों का वर्णन हुआ था। कौन से थे वो तीन शब्द? राग, रागानुगा, रागात्मिका। तो इन तीनों शब्द को जरा समझाइएगा, क्योंकि अभी ये दो अध्याय इन तीन शब्दों पे आधारित हैं, तो इन तीन शब्दों को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। बताइएगा, राग क्या है? तीव्र आसक्ति। तीव्र आसक्ति उत्पन्न होती है प्रेम से। तो जब बहुत प्रेम होता है तो उस प्रेम के अनुसार आसक्ति भी उतनी ही बढ़ती है, उतनी ही तीव्र हो जाती है। और ऐसे तीव्र आसक्ति का लक्षण क्या है? अन्य विचार कोई नहीं रहता, चित्त पूरी तरह से कृष्ण में मग्न रहता है, अन्य कोई भी विचार के लिए थोड़ी भी जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो यह है रति। तो इस भाव के अनुसार, इस आसक्ति के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसको क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति। और रागात्मिका भक्ति में राग और आत्मा, आत्मा का अर्थ यहां पे क्या है? सार। जिस प्रकार से हम सबका सार क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है, सार शरीर नहीं है। उसी प्रकार से राग आत्मिका मतलब जिसमें, जिसकी भक्ति में स्वरूप है वो राग का, उसकी पहचान है राग। तो इस आसक्ति के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और ये रागात्मिका भक्ति विशेष करके वृंदावन के भक्तों में पाई जाती है। ये वर्तमान काल का प्रयोग है। वास्तव में तो जो कृष्ण के समय में जो ब्रजवासी थे, जो गोप गोपियां थी, उनकी बात विशेष करके हो रही है। और प्राय किसी दूसरे जगह में ये भाव या इस प्रकार की भक्ति नहीं पाई जाती है। तो ये सिद्ध भक्तों की पहचान है, वृंदावन के सिद्ध भक्तों की। ये सिद्धि की अवस्था है, साध्य भक्ति की चरम सीमा है। तो फिर रागानुगा भक्ति क्या है? बताइए। यह भी साधन भक्ति का अंग है, वैधि भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति साधन भक्ति का ही एक अंग है। और इसके क्या लक्षण है, क्या पहचान है इसकी, इसका मतलब क्या है? रागानुगा का मतलब क्या है? जो राग भक्ति करते हैं उनका अनुगमन करना। तो ये साधक की अवस्था है या सिद्ध अवस्था है? साधक की अवस्था। और रागात्मिका सिद्ध अवस्था है। तो जो वृंदावन के भक्तों के पदचिन्हों में चलते हैं, जो उनका अनुगमन करते हैं भक्ति में, उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। तो जब हम वृंदावन के भक्त की बात करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण के साथ यहां वृंदावन में थे, विशेष करके जो गोलोक वृंदावन में नित्य रूप से निवास करते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। अभी हमने हमारा विषय है रागानुगा भक्ति, है ना। वैदिक भक्ति की चर्चा कर चुके हैं, अब रागानुगा भक्ति की चर्चा हो रही है 15वें और 16वें अध्याय में। परंतु रागानुगा भक्ति तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक, बोलिए जोर से बोलिए, जब तक हम रागात्मिका भक्ति नहीं समझेंगे तब। क्योंकि रागानुगा भक्ति की परिभाषा ही यही है कि जो रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलते हैं। तो जब तक हम रागात्मिका भक्ति नहीं समझेंगे तो रागानुगा कहां से समझेंगे फिर। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की चर्चा शुरू करने के पहले रागात्मिका भक्ति का संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं। और पूर्ण 15वां अध्याय इसमें विशेष करके रागात्मिका भक्ति की चर्चा हो रही है, रागानुगा भक्ति की नहीं। ये सारा पूरा 15वां अध्याय और 16वें अध्याय का जो शुरुआत है संबंध, अपने किताब में आप नोट कर लीजिएगा। पूर्ण 15 अध्याय नंबर 15 इसमें रागात्मिका का वर्णन है और 16वें अध्याय का जो पहला भाग है केवल संबंध रूपा भक्ति। वहां तक रागात्मिका है। फिर 16वें अध्याय से जो दूसरा शीर्षक है रागानुगा भक्ति की पात्रता, आप देख रहे हैं किताब में, वहां से वास्तव में रागानुगा भक्ति की चर्चा शुरू होती है। इसके पहले तो रागात्मिका भक्ति की पहचान करा रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, ठीक है ना। और आगे चल के रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो केवल संक्षेप में कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रेम की वजह से ये राग उत्पन्न होता है, ये रागात्मिका भक्ति होती है, वो तो केवल नित्य सिद्ध भक्तों में निवास करता है। इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा ही कहा है रागात्मिका भक्ति के बारे में। और प्रभुपाद जी ने इसे प्राय एक अध्याय में ही समाप्त कर दिया है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने भी संक्षेप में ही वर्णन किया है, ठीक है ना। और रागात्मिका की का वर्णन करने के बाद फिर 16वें अध्याय में रागानुगा भक्ति का वर्णन करेंगे वो। तो जहां भी 15वें अध्याय में रागानुगा लिखा गया है तो वहां समझ लीजिए कि वो रागात्मिका है, ठीक है ना। अपने किताबों में ये नोट कर लीजिएगा ताकि 25 साल बाद में भी जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे आपको याद आएगा कि ये रागानुगा का वर्णन नहीं है, रागात्मिका का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में वास्तव में प्रभुपाद जी ने ही इसका स्पष्टीकरण किया हुआ है, जिसमें उन्होंने रागात्मिका शब्द का ही प्रयोग किया है, परंतु यहां किसी तरह से रागानुगा शब्द आ गया है। तो आप समझ गए ना कि यहां रागानुगा शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया जा सकता। अगर आपको कहेगा कि आप क्यों कह रहे हैं कि यहां रागानुगा शब्द नहीं होना चाहिए बल्कि रागात्मिका होना चाहिए, आप क्या उत्तर देंगे। क्यों? तो क्योंकि वो सिद्ध अवस्था है, ब्रजवासियों की भक्ति वो सिद्ध अवस्था की भक्ति है, वो साध्य भक्ति है, साधन भक्ति नहीं है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना साधन और साध्य। तो साध्य भक्ति मतलब साधन का लक्ष्य, साधन करने से हमें क्या मिलता है, साध्य मिलता है। तो साधन भक्ति का लक्ष्य है साध्य भक्ति, साध्य भक्ति अर्थात भक्ति भाव और प्रेम। और ब्रजवासी वो तो न केवल भाव परंतु प्रेम के चरम सीमा पर स्थित है, तो वो तो साधक नहीं है, वो तो सिद्ध है। और रागानुगा जो है वो तो साधकों की भक्ति है। इसलिए ये जो रागानुगा शब्द है यहां रागात्मिका होना चाहिए। अच्छा, जो श्लोक आप जरा लगाएंगे ऊपर, पहला वाला जो था विराजंतीम, हाँ, रागानुगा भक्ति। तो सबसे पहले हम रागानुगा भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं जो रूप गोस्वामी देते हैं, उसके बाद राग, तत्पश्चात रागात्मिका। तो साधन भक्ति की परिभाषा हो चुकी है, फिर वैधि भक्ति और अब रागानुगा भक्ति। विराजंतीम अभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृताम यासा रागानुगोच्यते। अच्छा, ये पहले दो शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन बाद की बात आप जरा बताइए। रागानुग उच्चते, तो अ और उ की संधि लेकर क्या हो गया, ओ। तो रागानुगोच्यते का मतलब है कि रागानुग इसे कहा जाता है, सा ये है या सा स्त्रीलिंग है, तो ये रागानुगा कहलाता है। तो किस प्रकार का रागात्मिकाम अनुसृता, अनुसृता मतलब अनुसरण करने वाला, तो किन का अनुसरण करने वाला, ब्रजवासी जनादिशु। तो ब्रजवासियों के रागात्मिका भक्ति का अनुसरण जब किया जाता है तो उसे रागानुगा कहते हैं। तो ये रागात्मिका भक्ति की पहचान दे रहे हैं रूप गोस्वामी इन दो शब्दों से, विराजंतीम और अभिव्यक्ताम। और विराजंतीम का मतलब है जो बहुत ही उज्ज्वल है या जो प्रकट हुआ है, और अभिव्यक्ताम मतलब ही बहुत ही स्पष्ट रूपेण जो प्रकट हुआ है। अब तो जो रागानुगा जो रागात्मिका भक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है पूर्णतया प्रकाशित होती है ब्रजवासियों के जीवन में, उनके चरित्र में, ऐसे रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करने वाले भक्तों को रागानुगा भक्त कहते हैं। स्वारसिकी स्वार वो श्लोक है क्या, यहाँ पीछे स्वारसिकी श्लोक है ना, वो कृपया लगाएंगे ऊपर। ठीक है, तो अब राग और रागात्मिका का वर्णन है। पहले रागानुगा की परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है, और क्योंकि रागानुगा की परिभाषा में रागात्मिक शब्द आता है, तो अब वो रागात्मिक शब्द का स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। तो ये है श्लोक, राग और रागात्मिका भक्ति का वर्णन। इष्टे स्वासिकी नहीं है, स्वारसिकी, स्वारसिकी, र आएगा, स्वा और सी के बीच में र आएगा, स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मय्या। इष्टे स्वारसी की राग, इष्टे स्वारसी की राग परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति ही, सात्र रागात्मकोदिता। अच्छा, अभी राग और रागात्मिका इन दोनों का वर्णन हो रहा है। तो स्वारसिकी मतलब बहुत ही स्वाभाविक रूप से, या अपने अपने भाव के अनुसार, स्व स्वारसिकी अपने रस के अनुसार, इष्टे मतलब अपने इष्ट के प्रति, इष्ट कौन है, कृष्ण, राग, राग मतलब आसक्ति, परमाविष्टता, परमाविष्ट आविष्ट होना, आवेश मतलब बहुत ही मग्न होना, पूरी तरह से तन्मय हो जाना, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी कहते हैं ये परमाविष्टता का अर्थ ये भी है तृष्णा या प्यास, एक प्रकार की तृष्णा होनी चाहिए इष्ट के प्राप्ति के लिए। तो राग एक प्रकार की तृष्णा है अपने इष्ट के सेवा के लिए, भवेत हो जाता है। तन्मयी या भवेत भक्ति ही स अत्र रागात्मिक उदिता, रागात्मिक उदिता कहा जाता है, स अत्र ऐसे भक्ति को तन्मयी या भवेत भक्ति ही, तो ऐसे राग से जो बना हुआ बनी हुई है भक्ति, तन्मयी रागमयी, तन मतलब वो राग, तो उस राग से जो भक्ति की जाती है तन्मयी या रागमयी, उसे रागात्मिका कहते हैं। जो पहले हमने वर्णन किया था अब केवल श्लोक रूप में बोल रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो रागमयी भक्ति को रागात्मिका कहते हैं। तो मैं या मई शब्द का अर्थ आप जानते हैं ना, ये हम शब्द कब प्रयोग करते हैं, मैं या मई, चिन्मय, क्या इसका अर्थ होता है, प्रकाश मैं, तो ये मैं या मई हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, मैं मई, इससे क्या मतलब आता है, उससे युक्त, प्राय उससे बना हुआ समझिए, इतना एक प्रकार का संबंध हो जाता, वो कृष्ण मैं हो गया, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो बस कृष्ण मिल गया, लेकिन उसका चित्त कृष्ण में मिल गया। इस ऐसे तो तन्मयी, तत् मतलब वो राग, तो ये रागात्मिक भक्ति रागमयी भक्ति है। और राग का मतलब है परमाविष्टता, इष्टे स्वारसिकी राग, हमारे इष्ट के प्रति बहुत ही तीव्र प्रेम जिससे चित्त बिल्कुल समा जाता है, मग्न हो जाता है। अच्छा अभी पढ़िएगा, अभी रागानुग, राग और रागात्मिका तीनों शब्दों की परिभाषा अब हो गई है। अभी हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। और याद रखिए कि जहां रागानुगा कहा गया है वहां पे आपको क्या पढ़ना है, रागात्मिका। केवल इस अध्याय में, ऐसा नहीं कि सारे किताब में। हाँ जी पढ़िए कोई। कौन सीखता है, जो साधक है वो सीखता है ना, लेकिन इनको सीखना नहीं पड़ता, मतलब सिद्ध है, तो सिद्ध है तो रागानुगा नहीं हो सकता। हाँ आगे पढ़िए। सही है ना, किसी ग्वाल बाल को बताया जाता है कि सुबल तुम ऐसे जाके खेलो कृष्ण के साथ, नहीं, स्वाभाविक रूप से वो खेलते हैं। पढ़िए। ठीक है, स्पष्ट हो गया बात। अच्छा आगे भी पढ़िए। अब रूप गोस्वामी की परिभाषा रागात्मिका भक्ति की, जो हमने श्लोक में लिखा है यहाँ वो केवल वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, पढ़िएगा। अभी यह है परिभाषा, इस श्लोक का अनुवाद है ये। जो परिभाषा अभी आपने पढ़े ना, इस श्लोक का अनुवाद है। अब उस अनुवाद को पढ़िए और पुनः इससे मिलाइए, फिर से पढ़िएगा अनुवाद।
किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए,
तल्लीन रहते हुए मतलब कौन सा शब्द, नहीं वो बाद में आएगा। हाँ ठीक है, परमाविष्टता। हाँ पढ़िए। किसी वस्तु के
प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है।
ठीक है, तो यहां इसका अनुसंक्षिप्त रूप में अनुवाद समझ लीजिए। और यहां चैतन्य चरितामृत के श्लोक का वर्णन नंबर भी दिया हुआ है, बाद में कभी आपको समय मिलेगा परीक्षा के बाद में तो आप चैतन्य चरितामृत का श्लोक लेके सही उसका अनुवाद, शब्दार्थ वगैरह सब आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अभी ये श्लोक तो आपको कंठस्थ नहीं करना है परीक्षा के लिए, केवल जानने के लिए, ठीक है ना। तो आगे पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा आगे वाला वो दिखाएंगे आप। रागात्मिका के दो, दो प्रकार, इंद्रिय आकर्षण इसको वास्तव में काम रूप भक्ति कहा जाता है, और दूसरे प्रकार की रागात्मिका भक्ति को संबंध रूप भक्ति कहा जाता है। तो काम रूप भक्ति, रागात्मिका भक्ति कौन करते हैं? गोपियां, द्वारका की गोपियां, वृंदावन की गोपियां। द्वारका में गोपियां हैं? नहीं, वृंदावन की गोपियां, ठीक है, वृंदावन की गोपियां। और संबंध रूप भक्ति मतलब माधुरी रस को छोड़कर जो अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका समझती है, उनको छोड़कर जितने भी अन्य संबंध हैं ब्रज में, जैसे जो कृष्ण को अपना बच्चा मानते हैं, या बच्चा तुल्य, पुत्र तुल्य मानते हैं, या जो उनको अपना मित्र मानते हैं, जो उनको अपने प्रभु मानते हैं, ये सारे इसमें आ गए, संबंध रूप भक्ति। लेकिन याद रखिएगा, ये विशेष करके वृंदावन की बात हो रही है, अन्य जगहों की नहीं। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िएगा। अभी इसको, इसकी पुष्टि के लिए रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के प्रथम अध्याय से नारद मुनि के उपदेश दो श्लोक दे रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति है। ठीक है, तो अभी आने वाले दो श्लोक जो हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि ये दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति जिनका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है, उसका प्रमाण भागवत से। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िएगा। यहां क्या लिखा है, जो आप पढ़ेंगे अभी उसका ये श्लोक है, बस आप जो पढ़ेंगे वो अनुवाद है और श्लोक यहां पर है। ठीक है, तो कोई पढ़िएगा इस संदर्भ में।
संदर्भ में श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं, अंततः ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है।
तो ये श्लोक है, अच्छा नीचे द के आधा द है ना, तो वो भ नहीं है, वो ग होना चाहिए। हाँ, तद गतिम गताः। ये और इसके बाद में आने वाला श्लोक प्रभुपाद जी इसका कई बार वर्णन करते हैं अपने तात्पर्यों में। नीचे है ना, बहवस्तद भतिम नहीं गतिम होना चाहिए। द द के नीचे जो भ लिखा है ना वो भा, वो ग होना चाहिए वास्तव में, भ नहीं, गतिम। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः तद्गतिं गताः बहवस्तद्गतिं गताः। अच्छा, अब इसका अर्थ समझाइएगा। कामाद काम से, द्वेषाद द्वेष से, भयात भय से, स्नेहात यथा भक्तिये भक्ति भक्ति से, ईश्वरे मनः ईश्वर भगवान कृष्ण की के प्रति जो इस प्रकार से भक्ति करते हैं सेवा करते हैं, आवेश्य तद अघम हित्वा, ऐसे जो तीव्रता से स्मरण करते हैं भगवान कृष्ण का, आवेश्य इन पांच तरीकों से, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से, जो इस प्रकार तीव्र स्मरण करते हैं भगवान का, अघम हित्वा, तद अघम हित्वा, अघम मतलब पाप, हित्वा मतलब त्याग देना, तो जो पाप को त्याग कर इन पांच तरीकों में से किसी भी एक तरीके से को अपनाकर भगवान के ऊपर मन केंद्रित करते हैं, तीव्रता से भगवान का स्मरण करते हैं, बहवः कई हैं, कई जिन्होंने किया है उनको क्या होता है, तद गतिम गतिम गताः, तो उनको एक प्रकार की गति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक गति प्राप्त हो जाती है। अब फिर से पढ़िएगा, वो स्पष्टीकरण होगा ना अभी। इस कंफ्यूजन के स्पष्टीकरण के लिए ही तो रूप गोस्वामी ने यह उदाहरण दिए हैं। हाँ, फिर से अनुवाद पढ़िएगा अभी अभी जो लिखा है इस संदर्भ में, फिर से पढ़िए।
इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में सातवें स्कंध के पहले रह गए तीसवें श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम के प्रति सालिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकर्षित होते हैं, अंततः ये आकर्षण भौतिक कर्मों से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है।
तो यहां नारद मुनि ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें द्वेष से या भय से भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना चाहिए, वो कहना चाहते हैं कि चाहे भय से हो, द्वेष से हो, किसी भी कारण से क्यों न हो, लेकिन भगवान के ऊपर मन केंद्रित करो। केंद्रित करने से एक गति प्राप्त होती है, बहुत ही ऊंची गति प्राप्त होती है। तो जो जिन लोगों ने भय और काम से भी अपना मन केंद्रित किया, अगर उन्होंने सफलता प्राप्त की तो फिर भक्तों की बात तो दूर है, भक्तों को कितनी सफलता प्राप्त हुई होगी। तो मूल बात जो नारद मुनि कहना चाह रहे हैं कि हमें भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना चाहिए, वो ये नहीं बताना चाह रहे, उपदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि भय से या द्वेष से केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि भय और द्वेष से भी जो मन केंद्रित करता है भगवान के ऊपर, वो विचार, वो ध्यान इतना तीव्र होता है कि उससे ये गति भी प्राप्त हो जाती है। अब आगे अगले श्लोक में नारद मुनि इन वर्गों का उदाहरण देने वाले हैं। काम भावना से किन्होंने मन को केंद्रित किया, द्वेष से किसने किया, भय से किसने, स्नेह से किसने, भक्ति से किसने, और इन अलग 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 तरीकों से मन को केंद्रित करने की पद्धति के बाद रूप गोस्वामी कहने वाले हैं कि इनमें से कौन सी रागात्मिका भक्ति के अंग हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। ये दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति की बात वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला श्लोक, अगला श्लोक तैयार है। गोप्य कामान, हाँ अघम हित्वा, भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं, अघम हित्वा पापों को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर मन केंद्रित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो तो हम पढ़ने वाले हैं, अभी आने वाले श्लोक में आपके प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक में आए। नारद मुनि जानते थे कि आप ऐसा प्रश्न पूछने वाले हैं, देवकिरण ने प्रभु भक्ति शास्त्री क्लास में पूछेंगे तो अगले ही श्लोक में उत्तर देना है उनके लिए। गोप्य कामाद भयात् कंसो, द्वेषा चैद्यादयो नृपाः, संबंधात् वृष्णायः, स्नेहाद् यूयम्, संबंधात् वृष्णाय स्नेहाद्, यूयम् भक्त्या वयम् विभो, उत्तर होना चाहिए भक्त्या, भक्त्या वयम् विभो। अच्छा तो अब बताइए अर्थ, यहां जो लिखा है ना उन्होंने अलग अलग वर्ग दिए हैं ना, काम से, स्नेह से आदि, तो उनका वर्णन दे रहे हैं। गोप्यः कामाद, गोपियों ने मन केंद्रित किया काम से, लेकिन ये काम साधारण भौतिक काम नहीं है, इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। फिर भयात कंसह, कंस ने अपना मन केंद्रित किया था भय से। आपको याद है ना, आपने सुना है कृष्ण बुक से, कंस इतना भयभीत हो गया था कि 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करता था, सही है ना, उठते बैठते खाते पीते, जब कुछ पीता बीता तो जल में उसको कृष्ण दिखाई देता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका मन, उसका जीवन कृष्णमय हो गया, कृष्ण के अलावा कुछ और सोच नहीं सकता था कंस। द्वेषाज चैद्या, चैद्य, चैद्य मतलब चेदी राजा, चेदी के राजा को चैद्य कहते हैं। कौन है चेदी के राजा? शिशुपाल। आदयो मतलब और अन्य जो राजा थे शिशुपाल के अलावा भी, उनके साथी थे जो कृष्ण से द्वेष करते थे, नृपाह आदयो नृपाह, नृप मतलब राजा। तो काम हो गया, भय हो गया, द्वेष हो गया, अब संबंध। संबंधाद वृष्णायः वृष्णि, स्नेहाद यूयम, यूयम मतलब नारद मुनि बात कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, तो कह रहे हैं आप भाई, आप सब, तो यूयम मतलब आप, इसलिए वो कह रहे हैं स्नेह से आप पांडवों ने आपका मन केंद्रित किया कृष्ण के ऊपर। भक्त्या वयम विभो, विभो मतलब जो बहुत महान व्यक्ति होते हैं उनको विभो कहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को वो विभो कह रहे हैं, विभु। तो भक्त्या और भक्ति से वयम, हम लोगों ने, हम जैसे साधारण, अपने आप को साधारण भक्त कह रहे हैं नारद मुनि, वैधि भक्त। रूप गोस्वामी कहते हैं यहां वयम मतलब भक्त्या मतलब वैधि भक्ति, तो नारद मुनि यहां अपने आप को वैधि भक्तों में से एक मान रहे हैं। ठीक है, तो नीचे सबका उदाहरण दिया हुआ है, देखिए श्लोक में जो लिखा है संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखा है। वृष्णि 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 यदुकुल, वृष्णि वंश, कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। विभु, विभु मतलब कोई बड़े व्यक्ति को, भगवान का नाम है विभु वास्तव में, महान, परंतु यहां वो राजा युधिष्ठिर को विभु कह के संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभु, राजा को सम्मान दे रहे हैं। भागवत, इससे अगला श्लोक सातवें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक है, ये 30 है, ये 31 है, तो इसी श्लोक का अनुवाद यहां पे थोड़ा तात्पर्य रूप में प्रभुपाद जी ने दिया है।
विविध प्रकार के भक्त माने ये ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है, तो ये शिशुपाल,
आगे पढ़िए आगे पढ़िए, आगे पढ़ेंगे, आगे उत्तर आएगा इसका। हाँ पढ़िए आप।
कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः सपूत या रागात्मिका माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है।
तो याद है ना, अनुकूलिये न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो ये अनुकूल है नहीं, इसलिए उनका जो स्मरण है वो अनुभव भक्ति नहीं माना जाता। पढ़िएगा।
मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते। वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं, यदि ये स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो ये राजा लोग, मैत्री के स्तर पर हो तो ये रागात्मिका है, किंतु यदि ये वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागात्मिका भक्ति के पद को प्राप्त होता है तभी ये शुभ भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। रागानंद को रागात्मिका पढ़ना,
रागात्मिका पढ़ना। अच्छा, तो अभी रूप गोस्वामी इन 6 प्रकार के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि इनमें से जो 6 हैं, इनमें से कौन से रागात्मिका माने जाते हैं, कौन से नहीं माने जा सकते। सबसे पहले वो कहते हैं कि भय और द्वेष, अर्थात कंस आदि और शिशुपाल आदि, इनको भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि उनका स्मरण भक्ति नहीं है, क्योंकि भाव अनुकूल नहीं था उनका। तो ये दो कट गए यहां से, अब रह गए 4। अब आ गई बात संबंध और स्नेह। तो पांडवों का जो स्नेह था मित्रता के भावना में, उसमें एक प्रकार का विचार ये था कि कृष्ण शक्तिशाली हैं, कृष्ण भगवान हैं, एक प्रकार का ऐश्वर्य के भाव का मिश्रण था, इसलिए ये रागात्मिका नहीं कहलाता। दूसरी ओर जो वैधी भक्ति है वो तो वैधी है, वो रागानुगा के स्तर में नहीं है, तो रागात्मिका कैसे होगा? इसलिए नारद मुनि जो है वो भक्ति वैधी भक्ति वो भी रागात्मिका नहीं है। रह गई बात संबंध की, संबंध के लिए प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि अगर वो वास्तव में ऐश्वर्य रहित हो तो फिर वो रागात्मिका है, अन्यथा नहीं। तो निष्कर्ष ये है कि गोपियों का प्रेम तथा अन्य ब्रजवासियों का प्रेम वो मात्र रागात्मिका कहलाता है, दो प्रकार का। जैसे हम देख चुके हैं ना, इसके पीछे हम दो प्रकार बताए थे रागात्मिका भक्त के, काम रूप और संबंध रूप। तो संबंध रूप यहां है, संबंध और काम रूप दोनों का वर्णन है। तो और एक वहां मार्क करना चाहिए था, संबंध के ऐसे स्टार किया ना मार्क। केवल ये दो, ना उधर भक्त्या त, आधा क और त, भक्त्या। हाँ, गोपियों का और संबंध जो वास्तव में वृष्णि यहां कहा गया है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वृष्णियों का प्रेम उतना ही हो सकता है जब तक कि वो ऐश्वर्य रहित है। और तात्पर्य में जीव गोस्वामी कहते हैं अपनी टीका में कि वृष्णि का मतलब है वास्तव में ब्रजवासी। तो इन दो श्लोकों का प्रमाण रूप गोस्वामी ने क्यों दिया है, क्या साबित करने के लिए दिया है? पहले बताए थे हम कि दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति हैं, काम रूप और संबंध रूप। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ये दो श्लोक दिए हैं कि ये भागवत का भी प्रमाण है, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में कहा हुआ, इसलिए उन्होंने ये प्रमाण दिया है। और ऐसे विश्लेषण करके साबित किया है कि इन छह प्रकार के लोगों में जो अपना मन केंद्रित करते हैं भगवान के ऊपर, केवल ये दो काम और संबंध ही रागात्मिका कहला सकती हैं। हाँ, क्योंकि आप भगवद गीता के 11वें अध्याय में जानते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण का विश्वरूप देखा तो फिर क्या हो गया, अर्जुन के भाव को परिवर्तित हो गया ना। हाँ, मैं सखा मानता रहा, वो और एक अच्छा विषय है, लेकिन क्षमा मांगते हैं कि मैंने बहुत गलती की, मैं आपको एक मेरा केवल मित्र समझ रहा था, साथ में बैठकर हम सोते थे, खाते थे, उठते बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आप परम सत्य हो। लेकिन वृंदावन में ऐसे कोई बोलता है कृष्ण से? कंधे पे चढ़ जाते हैं, और कृष्ण बोलें कुछ बोलते हैं तो कृष्ण की बात ज्यादा चलती नहीं है वृंदावन में, है ना। स्नेह संबंध और काम
जो स्नेह वाला है ये
नहीं आता, इसलिए जो स्टार मार्क किए हैं, देखिए काम और संबंध। और वही बात पहले वाला, वो चार्ट जरा दिखाइएगा, और ये यहां रख दीजिए इसको, ये चार्ट फाड़ के यहां पे लगा दीजिए इसको, और जो इसके पहले जो चार्ट था ना, हाँ नहीं ये नहीं, इसके पहले, हाँ वो वाला, बस इसको रहने दीजिए। ये पहले वाला चार्ट था ना, तो इसमें क्या बताया गया था कि रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, काम रूप भक्ति और संबंध रूप भक्ति। तो इसी को साबित करने के लिए रूप गोस्वामी ने ये दो श्लोक बताए, इसलिए यहां पे रूपाल जी इनका वर्णन कर चुके हैं। अब एक मिनट, ये थोड़ा साइड में लगाइए प्लीज, ताकि दोनों दिख सकें। इस अध्याय में जहां भी रागानुग आएगा रागात्मिका, क्योंकि अभी रागानुग के लिए रूप गोस्वामी तैयारी कर रहे हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं, क्योंकि रागानुगा की जो परिभाषा है वो रागात्मिका पर निर्भर है, तो पहले रागात्मिका का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, फिर आगे चल के अगले अध्याय में रागानुगा का स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया, रूप गोस्वामी ने कह दिया कि दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति होती है, उसके लिए भागवत का प्रमाण भी दे दिया। अब ये प्रश्न आता है कि तद गतिन गताः, कि इन सबको काम वाले, द्वेष वाले, भय वाले, स्नेह वाले, भक्ति वाले, सबको एक गति प्राप्त होती है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आता है ना, आपका प्रश्न यही था ना, यहां भागवत में ऐसे लिखा है कि इन सबों को एक प्रकार की गति प्राप्त होती है, तो ये कुछ समझने के लिए मुश्किल है, कैसे हो सकता कि कंस और शिशुपाल एक तरफ और दूसरी तरफ नारद मुनि और वहां गोपियां, सबको एक प्रकार की गति कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं पढ़िएगा, रूप गोस्वामी के श्लोकों का अनुवाद कर रहे हैं, कृपया पढ़िए। यह समझने में कठिनाई हो सकती है,
यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हो, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतः इस बात को ठीक से समझना होगा, यद्यपि इन सबों का केंद्र भी भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य हैं, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका।
फिर से एक लाइन पढ़िए।
यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य हैं, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका।
तो आगे पढ़िए।
उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, यही अंतर है।
हाँ, तो अभी अंतर पता चल गया आपको,
जो माया वाला को मिलता है वही होता है।
आगे चल के आएंगे पढ़ेंगे। तो एक गति प्राप्त हुई मतलब भौतिक जगत के परे सारे गए, परंतु कंस और शिशुपाल उनकी तो भक्ति नहीं थी, परंतु फिर उन्होंने भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित किया था, भगवान के ऊपर मन केंद्रित करके उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया था, इसलिए उनको निराकार की प्राप्ति हुई। हालांकि वो भगवान से द्वेष करते थे, ठीक है, तो उनकी गति भौतिक जगत के परे हो गया, परंतु केवल निराकार में, निराकार ब्रह्म में। अब एक और कंस और शिशुपाल जो कि कृष्ण से द्वेष करते थे, दूसरी ओर महाराज वेन, वेन का नाम सुना है आपने, कौन थे आप कोई बताइए महाराज वेन के बारे में कुछ संक्षेप में, महाराज वेन कौन थे? बहुत धर्म परायण राजा थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, नहीं कौन थे वो? बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, किनके पुत्र थे महाराज? अंग, महाराज अंग के अति दुष्ट थे। वो भी भगवान को, भगवान से द्वेष करते थे, बल्कि उन्होंने एक अपने शासन में एक नियम बना दिया था, कानून बनाया कि भगवान विष्णु की उपासना बंद होनी चाहिए, मैं ही विष्णु हूं, मेरी ही उपासना होनी चाहिए, मेरे अलावा और कोई विष्णु कोई भगवान नहीं है, राजा ही सब कुछ होता है। तो बहुत द्वेष करता था वेन, और इसकी वजह से वेन की गति क्या हुई, किसी को पता है? मृत्यु के बाद वेन कहां गया? क्यों संशय क्यों हो रहा है आपको? ना ना, कैसे जाएगा ब्रह्म ज्योति में? नरक में गया, लेकिन मारने के बाद कहां गया? कहां? नरक। उसकी गति तो नरक थी। तो यहां हम देख रहे हैं कि महाराज वेन भगवान से द्वेष करता था, उसे नरक गति प्राप्त हुई। और यहां शिशुपाल भी और कंस भी भगवान कृष्ण से द्वेष करते थे, लेकिन उनको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हुई। ये कैसे भेदभाव, क्या कारण है? हाँ, कंस और शिशुपाल तन्मय हो, पूरी तरह से भगवान, उनका मन तल्लीन था भगवान में, भले अनुकूल भाव से नहीं था, परंतु उनका मन पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर केंद्रित था 24 घंटे। इसलिए ऐसे कंस का मन भय से केंद्रित था, शिशुपाल का मन द्वेष से केंद्रित था, परंतु 24 घंटे भगवान का स्मरण करने के कारण पूरी तरह से वो आगे चल के शुद्ध हो गए। परंतु महाराज वेन ऐसा स्मरण नहीं करते थे भगवान के ऊपर, ये अंतर था। तो अगर कोई कहेगा कि ठीक है, मैं भी भगवान के प्रति द्वेष करता हूं, मैं भी द्वेष करके मुक्ति पा लूंगा, हो सकता है। अगर ऐसे करना है तो उनको कंस या शिशुपाल की तरह 24 घंटे द्वेष करना चाहिए भगवान से, इतनी तीव्रता से द्वेष करना चाहिए कि यह संभव नहीं होगा। इसलिए इच्छा यही है कि भक्त बन जाएं। तो ऐसा नहीं कि जो भी द्वेष करेगा वो निराकार को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। जो द्वेष करते हुए 24 घंटे भगवान का स्मरण करेगा, जैसे कि शिशुपाल ने किया था, केवल ऐसे व्यक्ति को निराकार की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना? और आगे और दो उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद। अब इस भौतिक जगत के परे क्या है, आप बताइए, क्या है इस भौतिक जगत के परे, कुछ है या नहीं है? इस भौतिक सृष्टि के परे क्या है, कुछ है? ब्रह्मांडों के परे आध्यात्मिक जगत, बहुत अच्छा। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है, बस? हाँ, ब्रह्म ज्योति से शुरू होता है। ब्रह्म ज्योति क्या चीज है? भगवान के दिव्य शरीर का तेज। तो ये तेज कहां तक फैला हुआ है? सर्वव्यापी है, सब जगह है ना। और इस ब्रह्म ज्योति में क्या पाया जाता है, क्या मिलता, क्या होता है, क्या है वो ब्रह्म ज्योति के अंदर? प्रकाश है। और क्या है उसमें, और क्या है आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति के अलावा? केवल ब्रह्म ज्योति है आध्यात्मिक जगत में? ब्रह्म ज्योति के अलावा आध्यात्मिक जगत में क्या है? वैकुंठ मतलब क्या, क्या है? लोक है। आप सब जानते हैं, लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं बोलने के लिए, डर रहे हैं। डरिए नहीं, बोल दीजिए, हिचकिचाइए मत। इस भौतिक सृष्टि के परे है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में है अनंत कोटि अनगिनत वैकुंठ लोक। ये लोक है, वैकुंठ लोक है, ग्रह है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक, जहां स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। और अन्य वैकुंठ लोकों में कौन निवास करते हैं? भगवान के नारायण स्वरूप चतुर्भुज, ठीक है। तो ये जो कंस शिशुपाल जैसे व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार से द्वेष करते हैं और अपने अपने चित्त को भी मग्न करते हैं भगवान के विषय में, तो उनको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु भक्तों को क्या प्राप्त होता है? केवल गोलोक वृंदावन नहीं, केवल सभी लोग जितने भी भक्त हैं भगवान के, वो सब गोलोक वृंदावन जाएंगे?
नहीं,
जनरल में जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहां जाएंगे? वैकुंठ लोकों में, किसी भी लोक में जाएंगे। जो विष्णु के भक्त हैं विष्णु लोक में जाएंगे, अन्य वैकुंठ लोकों में जाएंगे। जो वृंदावन के भाव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो गोलोक वृंदावन जाएंगे, सही है ना? हाँ, तो भगवान के भक्त वैकुंठ लोकों में जाएंगे। और जो ऐसे शत्रु होते हैं भगवान के, जो द्वेष करते हैं, वो कहां जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो इसके लिए रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं आगे पढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, स्पष्ट हो गया ना सब कुछ? स्पष्ट हुआ? अभी आप समझाइए, हमें समझ में नहीं आया, आप समझाइए अभी क्या हुआ यहां, क्या बतला रहे हैं प्रभुपाद जी, संक्षेप में बताइए।
जैसे भक्त होता है वो तो राजा के महल में, जैसे वो भगवान के साथ रहेगा, जहाँ भगवान का निवास स्थान है भक्त भी भगवान के साथ रहेगा। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति की बात है, उसे भगवान के किसी राज्य में रहना है लेकिन भगवान तक उसकी पहुंच नहीं होगी।
पहला उदाहरण है सूर्य के किरणों का और सूरज का, सूर्य का। तो कोई हवाई जहाज या जेट विमान जो है वो सूर्य की किरणों में घूम सकता है भले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य के अंदर प्रवेश कर चुका है। सूर्य की किरणों में और सूर्य में अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है। तो सूर्य की किरणों में प्रवेश करना मतलब ये उपमा है कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना, सूर्य के गोले में प्रवेश करना अर्थात वैकुंठ लोकों में प्रवेश करना। दूसरा उदाहरण अंत में प्रभुपाद जी ने दिया है, राज्य में प्रवेश करना और राजा के महल में प्रवेश करना। राज्य तो बहुत बड़ा होता है, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग रहते हैं प्रजा, लेकिन राजा के महल में जाने वाले व्यक्ति गिने चुने होते हैं। हर एक आदमी अंदर नहीं जा सकता राजा के महल में। तो राज में अनेक प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से राज अर्थात आध्यात्मिक जगत, राज में तो कई लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो शत्रु हैं भगवान के कंस जैसे, वो लोग केवल निराकार ज्योति में प्रवेश करेंगे। केवल गिने चुने जो भगवान के नजदीक के हैं, निज जन हैं भगवान के, उनके भक्त हैं, वही मात्र वैकुंठ लोकों में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? हाँ, जैसे सूर्य देव, सूरज का गोला और सूर्य किरण एक ही है फिर भी भिन्न है। सूरज और सूरज की किरण एक भी हैं और भिन्न भी हैं। उसी प्रकार से तत्व में तो निराकार ब्रह्म तो आध्यात्मिक ही है, चिन्मय है, जैसे भगवान का दिव्य शरीर है। तो निराकारवादी भी प्रवेश करते हैं भगवान के धाम में, परंतु धाम में जाकर फिर वो कहां जाते हैं? लोकों में नहीं जाते, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, वो सभी लोग एक गति को प्राप्त कर गए, कहां? भौतिक जगत के परे चले गए सब। भौतिक जगत के दृष्टिकोण से सभी की गति एक ही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से सबकी गति अलग अलग है। समझ गए? जैसे समझिए कि हम बंबई से दिल्ली जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम एक ही गाड़ी में बैठे हैं और हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। अब बंबई के दृष्टिकोण से हम दोनों अपने अपने साथियों को बोलेंगे हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं, तो उनके दृष्टिकोण से तो हम दिल्ली गए हैं। परंतु दिल्ली में जाने के बाद मैं कोई छोटा सा धर्मशाला में जाऊंगा और आप ताजमहल होटल में जाएंगे, अंतर बहुत है ना। आप वहां जाएंगे, हम यहां जाएंगे। दिल्ली के बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो हम एक ही जगह जा रहे हैं, दिल्ली। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद हमारे दोनों के स्थान में बहुत बड़ा अंतर है। आप कहां ताजमहल होटल और कहां पे धर्मशाला। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत के दृष्टिकोण से कंस, शिशुपाल, गोपियां, नारद मुनि वगैरह सब जितने भी भक्त हैं, निर्विशेषवादी हैं, सबकी गति एक ही है। क्या है? भगवान का धाम। परंतु भगवान के धाम में जाने के बाद फिर कहां कहां जाते हैं, फिर उनकी दशाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में जाते हैं, विष्णु के भक्त वैकुंठ लोकों में जाते हैं, कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन में जाते हैं। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हो गया? तो ये तो उदाहरण आप याद रखिएगा, एक है राजा और राज्य और राजमहल, और दूसरा उदाहरण सूर्य और सूर्य के किरण। चाहे तो आप धर्मशाला और ताजमहल होटल का भी उदाहरण भी याद रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, वास्तव में दोबारा तो हो गए वो, क्योंकि शिशुपाल कौन है? जय विजय ही है, शिशुपाल और दंत वक्र। लेकिन उस माध्यम से फिर से वो अपने जय विजय के स्थान को पहुंच गए। परंतु कहने का स्थान ये है कि उनको वो पहले से सायुज मुक्ति प्राप्त हुई और उसके बाद फिर पुनः उनके तीन जन्म खत्म हो गए असुर योनि में, और फिर वो पुनः अपने जय विजय, अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लिए। परंतु सिद्धांत यहां क्या है कि ऐसे कार्य करने से, ऐसे अपने चित्त को मग्न करने से व्यक्ति निराकार को प्राप्त करता है। आप उत्तर दीजिए। देवलोक जाने से जैसे लोग वापस आ जाते हैं, वैसे निराकार में जाके भी वापस आते हैं। थोड़े निश्चय से बोलिए, आते हैं कि नहीं आते? आ जा सकते हैं।
आ सकते हैं या पक्का आते हैं?
ऐसा है कि वहां निराकार ब्रह्म में रस नहीं है, रसहीन जगह है, तो वहां कितने समय तक जीव रहेगा? भले करोड़ों करोड़ों सृष्टियों तक भी रहे भले, परंतु एक न एक दिन आएगा, नहीं भी आए तो रहेगा वहां, ठीक है, रहता रहेगा। ऐसे कुछ आनंद नहीं है, रस नहीं है जीवन में। तो नहीं भी आए और रहे भी अगर वहां पे, तो कुछ लाभ नहीं होगा उसे। केवल भौतिक सृष्टि के जो दुख हैं उनसे राहत मिलेगी बस, लेकिन देवी जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा आगे रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे भगवान के जो शत्रु हैं और जो निर्विशेषवादी हैं वो एक ही स्तर के हैं, क्योंकि उनको एक ही गति की प्राप्ति होती है। हाँ जल्दी से पढ़िएगा कोई। तो अभी सार क्या हुआ इसका कि भगवान के शत्रु और निर्विशेषवादी एक ही हैं, क्योंकि गति एक ही है, कि दोनों हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो निर्विशेषवादी हैं वो भी अपराधी हैं, लेकिन ऐसे निर्विशेषवादी लोग भी भक्तों के संग से भक्त बन सकते हैं और वो भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे चल के फिर ब्रह्मांड पुराण का प्रमाण रखा है रूप गोस्वामी ने, कोई पढ़िएगा ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है। और ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है।
ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों की भौतिक कर्म से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। ये आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा भी होती है, जिसमें कहा गया है कि इस भौतिक आकार से परे अनंत आकाश है। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं तथा निर्वेशवादियों को प्रवेश होने दिया जा सकता है, किंतु कृष्ण के भक्त सीधे वैकुंठ लोक जाते हैं। मुक्त शुद्ध भक्तों में भगवान के प्रति राधा जी का प्रेम विकसित होता है, विकसित रहता है। अतः उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है।
तो यहाँ पर निर्विशेषवादी और भक्तों के अंतर का स्पष्टीकरण फिर से किया गया है कि दोनों की गति अलग अलग होती है, एक वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, दूसरे निराकार ब्रह्म को। और आगे फिर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से एक श्लोक बतलाते हैं रूप गोस्वामी, जो मूर्तिमान श्रुति हैं उपनिषद आदि वो प्रार्थना करते हैं और वो भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो योगी लोग हैं जो कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो भी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परंतु हम तो गोपियों के पद चिन्हों में चल रहे हैं और हम आपके साथ वही संबंध रखना चाहते हैं जो कि गोपियों ने रखा था। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे कि ब्रजवासी और विशेष करके गोपियां करती थी, उनको वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाता है। फिर आगे श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि काम, जब हम कहते हैं कि काम रूप भक्ति, ये काम ये संसार का काम नहीं है। अच्छा, वो दूसरा एक है ना, उसमें लगाइएगा। दो प्रकार के काम, भौतिक आध्यात्मिक, ये नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक, हाँ ठीक, ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाला मत देखिए, केवल ऊपर वाला अलग है वो, हाँ नीचे वाला चार्ट अलग है, इसको अभी मत लिखिएगा, वो बाद में आएगा। केवल ऊपर काम भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक काम जो है ये भौतिक जगत में संसार में पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों में ना जो भक्त नहीं है। और आध्यात्मिक काम जो है ये सच्चा प्रेम है। जो भक्ति कहते हैं या कृष्ण प्रेम कहते हैं वो सच्चा काम है, आध्यात्मिक काम। बल्कि ये संसार का जो काम है वो आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोक के काम का विकृत प्रतिबिंब है। यहां भौतिक जगत में प्रेम नाम की चीज नहीं है। जो भी प्रेम कहा जाता है वो वास्तव में काम ही है, भौतिक काम, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल रूप से हो। परंतु आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सात्विक, विशुद्ध सात्विक प्रेम होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हैं। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, करने की इच्छा रखना, ये आध्यात्मिक काम है, जिसको प्रेम कहते हैं। वास्तव में प्रेम है ये। और अपने ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना या ये इच्छा रखना, ये काम है, अर्थात भौतिक काम। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी कहते हैं कि सच्चा प्रेम या आध्यात्मिक काम ये सोने के बराबर है और भौतिक काम ये लोहे के बराबर है। लोहा और सोना दोनों भले धातु हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक काम जो कि गोपियों का है कृष्ण के प्रति, और भौतिक काम जो कि इस संसार में पाया जाता है, दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु उनमें अंतर बहुत है। तो ये आध्यात्मिक काम और भौतिक काम का भेद श्रील प्रभुपाद जी यहां काफी विस्तार में करते हैं, और इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेना ये भक्तों के लिए आवश्यक है। तो कृपया पढ़िएगा। तो ठीक है ना, थोड़ा स्पष्ट हो रहा है ना आध्यात्मिक काम और भौतिक काम में। और आगे चल के भी श्रील प्रभुपाद इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पे इंद्रिय आकर्षण ये विषय है। इंद्रिय आकर्षण अर्थात काम रूप रागात्मिका भक्ति। और आगे चल के 16वें अध्याय में संबंध रूप रागात्मिका भक्ति का वर्णन करेंगे। तो फिर ये जो भौतिक और आध्यात्मिक काम की चर्चा यहां पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं, कोई पढ़िएगा। तो यहां जो ग्वाल बाल का उदाहरण देकर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं?
भगवान की सेवा की उत्कट इच्छा व्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में लाया जाता है। चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए विद्वजन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की विधि है।
कितना स्पष्ट कर दिया है प्रभुपाद जी ने। अगर किसी को संशय हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे प्रश्न करते रहते हैं भक्तों से, तो उनको ये पढ़ा देना चाहिए। सब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और आगे फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, इसका प्रमाण कि गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है ये शुद्ध है, ये आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और वो कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक है उद्धव और दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु। अब उद्धव को जब श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजा था, कृष्ण की इच्छा थी कि उद्धव जान ले कि ब्रजवासियों का प्रेम कितना उत्कृष्ट है। तो उद्धव जब यहां पर आए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। यदुओं में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं उद्धव, सबसे श्रेष्ठ भक्त। परंतु जब वो यहां पर आए वृंदावन में और उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम देखा और विशेष करके गोपियों का प्रेम देखा, तो बस वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने सोचा कि मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा अगला जन्म क्या हो जाए वृंदावन में, एक घास का तिनका, मैं घास का तिनका हो जाऊं जिससे कि सारे गोपियां और ब्रजवासी जो हैं अपने चरण कमल की धूली मेरे सर पे लगाएंगे। ये इतने महान है ब्रजवासी। और विशेष करके उद्धव ने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की। अब उद्धव तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो उनको तो कोई संसार के काम से लेना देना है नहीं। तो अगर गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति साधारण काम के वश में होता तो उद्धव ऐसे उनकी प्रशंसा क्यों करते? और एक उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और उनकी संन्यास लीला में वो इतने सख्त थे संन्यास नियम का पालन करने में कि किसी भी महिला को, स्त्री को वो दूर से ही बात, अगर बात करना भी होता तो बिल्कुल दूर से, बहुत ही सख्त थे नियम में। और ऐसे सन्यासी भी जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका निष्कर्ष ये है, रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, कि हमारे आराध्य भगवान है श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? जो वृंदावन के हैं, तद्धाम वृंदावनम, व्रजेश तनय, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण जो कि वृंदावन के हैं, ये हमारे आराध्य भगवान हैं। और इनकी सेवा भक्ति में जो गोपियों का प्रेम है, स्थान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन सफल बनाना चाहता है तो उनको गोपियों के पद चिन्हों में करके चल के ऐसा ही भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए जैसे गोपियों ने किया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। अगर ये गोपियों का कृष्ण का प्रेम साधारण संसार का संबंध हुआ होता तो क्यों ऐसा कहते चैतन्य महाप्रभु? तो इससे, इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति पूर्णतया आध्यात्मिक है। और एक बात श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवत में कहा गया है कि भगवान के रास लीला का श्रवण अगर हम करेंगे अधिकृत स्रोतों से, अधिकृत भक्तों से जो परंपरा में आ रहे हैं और जो सही उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति के अंदर जो काम वासना है वो नष्ट हो जाएंगी। तो फिर जिनका वर्णन सुनने से काम वासना नष्ट हो जाती है, तो भले जो उस लीला में शामिल हो रहे हैं उस लीला में काम कैसे हो सकता है, इस भौतिक जगत का काम कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप बात को? अगर ये साधारण काम के लीला होती, कार्य होते, तो इनको श्रवण करने से काम की वृद्धि होती, परंतु इनका श्रवण करने से काम नष्ट हो जाता है हृदय में। अर्थात ये साधारण काम के कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक है पूरी तरह से। तो इस पैराग्राफ में ये तीन पॉइंट हैं, उद्धव के, चैतन्य महाप्रभु के और रासलीला के श्रवण के बारे में। हाँ? भागवत में कहा गया है। अच्छा, आप में से कोई समझाइए अभी। हाँ समझाइए।
भले काम वासना से ओतप्रोत हो, लेकिन अगर वो भगवान की लीला को पढ़ता है, जो गोपियों के साथ भगवान की रास लीला है उनको पढ़ता है, तो उसकी काम वासना जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
कहाँ से सुनना चाहिए? अधिकृत प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। हाँ तो आगे बढ़िए, फिर क्या होता है?
उसकी काम वासना
समाप्त हो जाती है,
भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उसमें उत्पन्न हो जाता
है। बहुत अच्छा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर जो गोपियों का कृष्ण का जो संबंध है, अगर काम में होता तो उन चीजों को पढ़ने से तो काम और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर काम वासना समाप्त होती है, समझना चाहिए तो प्रेम दिव्य है, उनमें काम का लेश मात्र भी नहीं
है। बिल्कुल ठीक है।
इस तरह कार्य करना
चाहिए,
क्योंकि मतलब ये कोई समझे कि ये दिव्य प्रेम है, तो किस प्रकार मतलब उस पे असर होगा जिसे वो श्रवण करता है?
क्योंकि ये दिव्य लीला है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत में कहा है ना, केवल कृष्ण कथा सुनने मात्र से भक्ति उदित होता है हृदय में, और शोक मोह भय आदि जितने भी अनर्थ हैं, काम आदि सब नष्ट हो जाते हैं कृष्ण कथा सुनने मात्र से। ये कृष्ण कथा का गुण है कि वो हृदय में स्थित सारे अनर्थों का नाश करता है, अगर सही भाव से, सही व्यक्ति से हम सुने तो। ठीक है ना? तो गोपियों का भाव कैसे कामुक हो सकता है भौतिक दृष्टि से, अगर उनकी लीलाओं को सुन के हमारा काम, हमारी काम भावना नष्ट हो सकती है, तो उनकी भावना भौतिक काम से युक्त कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु, उद्धव और कितने सन्यासी हुए और महान भक्त हुए, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हुए, उन्होंने ऐसे गोपियों के लीलाओं को का गुणगान क्यों किया होता? ठीक है ना। और फिर अंत में रूप गोस्वामी थोड़ा भेद करते हैं गोपियों के प्रेम में और कुब्जा के प्रेम में। कुब्जा का प्रेम गोपियों के प्रेम के समान पूरी तरह से नहीं था, हालांकि कुब्जा भी कृष्ण की भक्त थी, लेकिन कुब्जा के प्रेम में थोड़ा मिश्रण था भौतिक काम का। ठीक है। तो इसके ऊपर कोई प्रश्न है आपके, अभी जो चर्चा हुई? तो इससे काम रूप रागात्मक का भक्ति ये समाप्त हुआ। और आगे 16वें अध्याय में अब ये संबंध रूप रागात्मक का भक्ति का वर्णन प्रभुपाद जी करेंगे। ये काम रूप रागात्मक का भक्ति के समान है, अंतर केवल इतना है कि काम रूप गोपियों के प्रेम का प्रेम है, और संबंध रूप जो वात्सल्य भाव या सख्य भाव दास्य भाव के भक्तों के संदर्भ में है। हालांकि काम रूप गोपियों का भी संबंध है कृष्ण से, फिर भी ये संबंध का महत्व इतना है कि इसको अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे अगर कोई कहे, जीव गोस्वामी कहते हैं कि सब लोग आ रहे हैं और राजा भी आ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि सब लोग आ रहे हैं उसमें राजा भी सम्मिलित हैं, फिर भी हम राजा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए हम अलग से भी कहते हैं कि सब लोग आ रहे हैं और राजा भी आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से काम रूप ये भी संबंध है गोपियों को जो प्रेम है, ये भी एक प्रकार का संबंध है, दिव्य संबंध है, परंतु ये इतना निराला है, इतना श्रेष्ठ है, विशेष है कि इसको एक अलग श्रेणी में ही डाल रहे हैं रूप गोस्वामी। इसलिए उन्होंने रागात्मक भक्ति के दो प्रकार बतलाए हैं, संबंध रूप और काम रूप। तो काम रूप का वर्णन करने के पश्चात अब संबंध रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो कृपया पढ़िएगा 16वें अध्याय में पहुंच गए हम लोग अभी। हाँ जी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो रागात्मक का प्रेम है ये तो नित्य सिद्ध भक्तों का प्रेम है, इसलिए मैं अधिक वर्णन नहीं करने वाला हूं। तो प्रभुपाद जी भी यहां कह रहे हैं तो और कोई आवश्यकता नहीं है इसके, इस बात को आगे बढ़ाने में, बात का यही विराम कर देते हैं रागात्मिका के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये इस दुनिया के भक्तों की बात नहीं है, और इसके पहले उन्होंने संबंध रूप रागात्मिका भक्ति के बारे में कहा है। उदाहरण क्या दिए, कौन से दिए उन्होंने? नंद बाबा, यशोदा माता, वृंदावन के जितने भी वासी, जैसे वो ग्वाल बाल मित्र हैं और उनके दास हैं, वो सब संबंध रूप रागात्मिका भक्त हैं। तो इसके साथ रागात्मिका भक्ति का वर्णन समाप्त होता है, और अब आगे से रागानुगा भक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो अभी 5 या 10 मिनट की छुट्टी, तो आप थोड़ा फ्रेश होकर आइए, क्योंकि हम 6 बजे तक चलने वाले हैं। करें, आप चलना चाहते हैं? नींद नहीं आ रही, उब नहीं जा रहे हैं ना? ना मुझे तो नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूं, मुझे कोई परीक्षा में बैठना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। रागानुगा भक्ति की पात्रता, तब आपको श्रृंखला भी आ रहा है ना, पकड़ आ गई ना आपको, ये दोनों अध्यायों के 15 और 16 रागात्मिका, राग और रागात्मिका, और अभी रागानुगा। ठीक है,
इस पैराग्राफ में रागात्मिका और भक्ति का वर्णन है।
हाँ, और आगे चल के अब रागानुगा भक्ति का वर्णन शुरू होने वाला है। तो अपने शब्दों में बताइए रागानुगा क्या है? रागात्मिका क्या है हम जान लिए हैं, अब रागानुगा क्या है जरा बताइए अपने शब्दों में जो अभी अभी पढ़ा गया। वृंदावन वासियों का प्रेम रागात्मिका प्रेम है, तो उनके पद चिन्हों में चलना। आगे वास्तव में जो वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलने की इच्छा है, ये कोई साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए रागानुगा भक्त भक्ति कहलाने के लिए। ये इच्छा बहुत ही तीव्र होनी चाहिए, बल्कि ये एक लोभ बन जाना चाहिए। आपने देखा होगा संसार में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे कमाने में या कोई भौतिक चीज प्राप्त करने में प्राय पागल जैसे हो जाते हैं, दुनिया की हर दूसरी चीज को भूल जाते हैं, केवल उस चीज के पीछे, है ना? देखा है आपने ऐसे लोगों को? बहुत ही लोभी होते हैं, जहां देखते हैं वहां उनको पैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना? सब जगह यहां से पैसे कैसे बनाए जाए, वहां कैसे कमाए जाए, यहां कैसे कमाए जाए, क्योंकि उनकी भावना, उनकी चेतना वैसी है। तो लोभ बहुत अधिक है उनको, राग है पैसे के प्रति, तो सब जगह पैसा 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 ही दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से जो कृष्णमय होते हैं उनको भी सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो लोभ, जब वो लोभ जागृत होता है किसी भक्त के हृदय में कि मैं वृंदावन के किसी निवासी के पद चिन्हों में चलना चाहता हूं, तो फिर वो रागानुगा भक्ति के लिए योग्य व्यक्ति हो जाता है। तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली योग्यता क्या चाहिए, क्या है? लोभ। क्या, किस प्रकार का लोभ? वृंदावन वासियों के पद चिन्हों में चलना, और किसी एक प्रकार के, किसी एक ब्रजवासी के पद चिन्हों में चलना, ऐसे नहीं कि सर्वसाधारण सबके पद चिन्हों में चलना, नहीं, उसके कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जिनका अनुसरण वो करना चाहते हैं। जैसे कोई सोचे मैं सुबल ग्वालबाल के का अनुसरण करना चाहता हूं, कोई कहते हैं मैं ये फलाने मंजरी का या गोपी का मैं अनुसरण करना चाहता हूं, ऐसे नहीं कि वो बोले कि मैं सुबल होना चाहता हूं, मैं रूप मंजरी होना चाहता हूं, ऐसा नहीं, हम नहीं हो सकते। ये सारे नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, तो वो हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, हम उनके सेवक बन सकते हैं, उनके सेवकों के सेवक बन सकते हैं। जिस प्रकार से ये कहना अपराध है कि मैं कृष्ण बनना चाहता हूं, उसी प्रकार से ये भी अपराध है कि मैं नंद महाराज बनना चाहता हूं, मैं सुबल बनना चाहता हूं, मैं ललिता बनना चाहता हूं। हाँ, हम उनके जैसा भाव करना अपने आप लाना चाहते हैं, हम वो कह सकते हैं, परंतु हम नंद महाराज बनेंगे, ये नहीं। नंद महाराज की तरह है कृष्ण को अपना पुत्र मानने का भाव हम विकसित करना चाहते हैं हृदय में, ऐसा हम भाव रख सकते हैं, परंतु मैं नंद महाराज हो जाना चाहता हूं ये संभव नहीं है, और ये बल्कि ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। तो किसी एक विशेष भक्त, वृंदावन के भक्त के प्रति आसक्ति रख के उस भक्त के पदचिन्हों में चलने का जब लोभ हो जाता है, तो ये रागानों का भक्ति कब की पहली योग्यता हो जाती है। ठीक है, ऐसे मन में चिंतन तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, परंतु आगे चल के भी रूप गोस्वामी कहने वाले कि और क्या योग्यता चाहिए रागानुग में प्रवेश करने के लिए। ये तो पहले एक पहले ही योग्यता है, और भी आगे बात कहने वाले हैं रूप गोस्वामी। और दूसरी बात जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार, कि जो ये लोभ है इतना तीव्र है ये लोभ, कि वो शास्त्रों के आदेश के अनुसार या कोई युक्ति पे आधारित नहीं है। जो उसका लोभ है कि मैं इस वृंदावन के भक्त के पदचिन्हों में चलना चाहता हूं, ये लोभ शास्त्रों के आदेश के अनुसार या युक्ति के आधार पर नहीं स्थित होता। वो इसलिए ये लोभ नहीं करता कि शास्त्रों में कहा गया है कि करना चाहिए, वो वैधि भक्ति का स्तर है। रागानुगा के स्तर में आके भक्त स्वाभाविक रूप से ऐसे लालसा करता है। कोई कह रहा है, गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोभ रखेगा नहीं, स्वाभाविक रूप से उसका लोभ ऐसे है। जब कोई उन्नत भक्त जो है ऐसे भगवान के वृंदावन लीलाओं के बारे में श्रवण करता है पांचों भावों में, पांचों रतियों में, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत, तो फिर उसकी प्रवृत्ति उस दिशा में हो जाती है और उसकी बुद्धि आकृष्ट हो जाती है, और फिर वो एक किसी विशेष प्रकार के रति या भाव के प्रति लोभी हो जाता है। और ऐसे रागानुगा भक्त की जो सेवा है वो केवल उसके लोभ पर आधारित होती है, और किसी भी शास्त्र या किसी भी दूसरे आदेश या युक्ति के ऊपर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रागानुगा भक्त जो है किसी भी नियम का पालन नहीं करता या किसी भी युक्ति का सहारा नहीं लेता है, नहीं। कहने का मतलब है कि उसकी सेवा प्रेरित होती है उसके लोभ से, शास्त्रों से नहीं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। अब आगे योग्यता, फिर क्या हम भी कर सकते हैं रागानुगा भक्ति? क्या योग्यता चाहिए? आगे पढ़िएगा। बहुत अच्छा। तो बताइए अब रागानुगा साधना में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भौतिक कल्मश से मुक्त, अनर्थ निवृत्ति को पार करके जब जाएंगे तब हम रागानुगा भक्ति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और समय के पहले जो ऐसे बस कल्पना करना चाहते हैं कि मैं वृंदावन में ये हूं और वो हूं, वो केवल क्या है? सहज है, सहजीय भाव है। इसके बारे में आगे प्रभुपाद चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि नियमों का पालन, विधि विधान, विधि निषेधों का पालन सख्ती से करना बड़ा आवश्यक है भक्त के लिए। तो रागानुग भक्ति की योग्यता का वर्णन इस प्रकार से किए हैं रूप गोस्वामी। और अब आगे चल के रूप गोस्वामी कहने वाले हैं कि इस रागानुग साधन की पद्धति क्या है, क्या करना चाहिए रागानुग भक्त को, साधक को क्या करना चाहिए। पढ़िएगा, शील रूप गोस्वामी ने कहा है, वहां से पढ़िए। तो अभी ये रागानुग साधन की पद्धति या रागानुग साधन में भक्त को क्या करना चाहिए, इसके लिए रूप गोस्वामी तीन श्लोक कहे हैं। उनमें से ये पहला श्लोक है। इस पैराग्राफ में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण का वृंदावन का रूप का स्मरण करे जो उसके रस के अनुसार है, और साथ साथ एक ऐसे भक्त का स्मरण करे जिसके पद चिन्हों में वो आगे चलना चाहता है। अगर कोई माधुरी रस के कोई भक्त का अनुसरण करना चाहता है तो उस प्रकार से किशोर कृष्ण रूप का स्मरण करना चाहिए, साथ साथ उस भक्त का भी, उस गोपी का या मंजरी का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई वात्सल्य रस की कोई भक्त का अनुसरण करना चाहता है तो उसे कुमार कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस भाव में वो आगे बढ़ना चाहता है, जिस भक्त के पद चिन्हों में चलना चाहता है, उस दृष्टि से उसे उस भक्त और कृष्ण के उस रूप का स्मरण करना चाहिए। और ऐसे भाव का अनुशीलन करते उसे प्रयास करना चाहिए कि वो ब्रज में वास करे। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कोई ब्रज में वास कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और किसी कारणवश नहीं कर सके तो कैसे वास करना चाहिए? मन में वास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है आपको एक बार सुनाए थे हम, मोर मन वृंदावन। मोर मन मांगे मोर नहीं, मोर मन वृंदावन। और बिल्कुल, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए भक्त को। अगर उसे लगता है कि यहाँ रह के मैं अपराध रहित जीवन नहीं जी पाऊंगा तो अच्छा है कि दो चार दिन यहाँ रहे या थोड़े समय के लिए रहे और फिर कहीं दूसरे जगह चल के मन में वृंदावन का वास करे। और इस प्रकार से ब्रजधाम की लीलाओं का स्मरण करता रहे भक्त, तो ये पहली बात है। दूसरा कार्य जो कि भक्त को करना चाहिए वो कैसे है वो आगे पढ़िएगा। रागानों के साधना की बात हो रही है, जो भक्त वास्तव में
कृष्ण भावना अपने आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वे तिथि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। भाव यह है कि जब तक वह जय शरीर बाहर है तब तक उसे निर्दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के लिए लाभ करना चाहिए, किन्तु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए जीवन भाव को विकसित कर सकता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि भले भक्त आगे बढ़ भी क्यों ना चुका हो, बाहरी रूप से उसे वैदिक भक्त की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। केवल अंतःकरण में भले वो रागानुग साधन करे लेकिन अपने आप को पेश नहीं करे कि मैं बहुत आगे बढ़ा हुआ भक्त हूं, नियमों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि रागानुग भक्ति भी साधन भक्ति ही है। और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है एक ऐसे मार्गदर्शक के द्वारा, तो अपने अंदर की जो भावना है उसको विकसित करता रहे भला, परंतु बाहर से कैसे बर्ताव करे, नवदीक्षित भक्त की तरह ही रहे वो। और इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं सिद्ध प्रणाली जो समय के पहले अपने आध्यात्मिक जगत में जो सिद्ध रूप है वो ऐसे गुरु हैं जो बता देते हैं अपने शिष्यों को, तथाकथित गुरु तथाकथित शिष्यों को बताते हैं कि भी तुम गोलोक वृंदावन में मोर हो, तो वो मोर की तरह नाचने लग जाता है और बाहर जाके बीड़ी पी लेता है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं हुई है तो ये सब साधना नहीं किया जा सकता है। तो आगे प्रभुपाद जी सिद्ध प्रणाली के बारे में क्या कहते हैं जरा पढ़िएगा। तो उनका कहना कि ये मेरा स्वरूप है केवल उनके विचार मात्र से है, वो सोचते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन में ऐसे हूं वैसे हूं बस, परंतु उनका वो अधिकार नहीं है। वो वास्तव में स्थिति नहीं है उनकी, कृत्रिम रूप से अपने आप को कुछ सोच लेते हैं कि मैं ऐसा हूं गोलोक वृंदावन में, और इसी वजह से वो समाज में बड़ा उत्पात कर देते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। परंतु भक्त को चाहिए, वास्तव में जो सच्चा रागानुग भक्त है उसे चाहिए कि बाहर से वो एक नवदीक्षित भक्त की तरह बर्ताव करे, इस दृष्टि से कि वो सारे साधन भजन वगैरह ठीक ठाक करे, नियमों का पालन करे, लेकिन अंदर ही अपने सिद्ध रूप में वो वृंदावन के किसी भक्त के पद चिन्हों में चलता रहे। चाहे उसके उसके इच्छा के अनुसार, उसके भाव के अनुसार, चाहे वो गोपी है, कोई कोई वरिष्ठ गोपी है, कोई तरुणी है गोपी, या कोई ग्वाल बाल है, कोई सेवक है कृष्ण का, जैसे जैसे व्यक्ति का भाव है उस प्रकार एक भक्त वो चुन लेता है, आकर्षण हो जाता है उस भक्त के प्रति, और उस भक्त के पद चिन्हों में वो चलने का प्रयास करता है। लेकिन वो अंदर होना चाहिए, अंदरूनी बात है, बाहर से अपना जो साधक रूप है उसे इन कार्यों में लगाना चाहिए, और अपने सिद्ध रूप जो है वो अपनी साधन में लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बात हो गई। तीसरी बात फिर आगे क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी, पढ़िएगा। तो ये तीसरी बात यहां रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि रागानुग भक्ति के अवस्था में भी साधक को चाहिए कि वैधि भक्ति में जो वो अंग भक्ति के अंग का पालन, अंगों का पालन कर रहा था, उनको जारी रखे। ऐसा नहीं कि वो बंद कर दे इनको करना, जैसे श्रवण कीर्तन आदि, और उन अंगों को वो चुने विशेष करके जो उसके साधन के लिए, उसके रागानुग भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक हो, अनुकूल हो। तो भक्ति के अंगों को त्यागना नहीं चाहिए साधन भक्ति में, उन्हीं विधियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे वो 64 अंग हैं भक्ति के, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं वैदिक भक्ति के स्तर पे, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये अब रागानुग भक्ति के अंग बन जाते हैं, पहले वो वैदिक भक्ति के अंग थे, अब रागानुग भक्ति के अंग हो जाते हैं। और इन 64 अंगों में से विशेष करके उन अंगों को चुनना चाहिए जो उसके साधन के लिए बहुत लाभदायक हों। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें हैं। कौन सी ये तीन चीजें? रागानुग साधन की पद्धति के बारे में कौन सा पहला है? नहीं, वो तो योग्यता है, कृष्ण के वृंदावन रूप का स्मरण करना, साथ साथ ऐसे भक्त का स्मरण करना जिनका अनुसरण हम करना चाहते हैं, और साथ साथ हमें ब्रजवास करना चाहिए, अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सके तो मन में वास करना चाहिए। ये रागानुग साधना की पहली बात है। दूसरी बात, सिद्धि मतलब यह रागानुग भक्ति की बात हो रही है, साधक ही है व्यक्ति, रागानुग भाव प्राप्त करने के बाद भी इस रागानुग में सिद्धि प्राप्त करने में तब भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने आप को नवदीक्षित भक्ति तरह प्रस्तुत करना चाहिए। उसका जो साधक रूप है वो नवदीक्षित भक्त की तरह सेवा में युक्त होना चाहिए, परंतु उसका सिद्ध रूप जो है अंदर से वो अपने रागानुग साधन में लगा सकता है। और इस संदर्भ में प्रभुपाद जी सिद्ध प्रणाली की बात के बारे में चेतावनी देते हैं। और तीसरी बात क्या है कि रागानुग साधन भक्ति के समय भी हमें वैदिक भक्ति के जो 64 अंग हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए, केवल विशेष करके उन अंगों को स्वीकार करना चाहिए जो कि हमारे रागानुग साधन में लाभदायक हैं। ठीक है। तो रागानुगा भक्ति की चर्चा में दो विषय हुए हैं अभी। पहले कि रागानुगा भक्ति के लिए योग्यता क्या है, और दूसरी बात कि रागानुग साधन की पद्धति क्या है, ठीक है ना। और अभी काम रूप रागानुग भक्ति का वर्णन यहां करने वाले हैं श्रील प्रभुपाद जी। और वो कहते हैं कि ऐसे काम रूप रागात्मिका भक्ति, रागानुग भक्ति एक मिनट, और जो और एक ये है चार्ट जरा उसको, आप थक गए होंगे सबने, सुबह भी 3 घंटे का क्लास, अब भी 3 घंटे का क्लास, थक गए हैं जरा। जो अभी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी थोड़े समय बाद भी बार बार इसको फ्रेश करते रहिएगा ताकि आप भूल नहीं जाएं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये ग्रंथ आपके सदैव साथ में रहेगा, भक्ति रसामृत सिंधु। अच्छा, तो कोई पढ़ेंगे अभी कामानुगा प्रेम, ठीक है। तो यहां भी किया है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो दो प्रकार के माधुर्य रागानुग प्रेम है, कामानुग प्रेम। हाँ पढ़िएगा।
इन दोनों ही भावों में उस विशेष गोपी का अनुष्ठान करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में स्वर्ण है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष स्वर्ण रहने की कहने को केरी कहा जाता है।
साथ साथ इसे संभोग इच्छामयी भी कहते हैं। पढ़िए।
केरी का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना।
इसका मतलब है कि सीधे हम कृष्ण का संग करें, सीधे डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं, हम सीधे इस प्रकार से कृष्ण की लीला में शामिल होना, जैसे गोपियों ने जो रासलीला किया था ना, प्रत्यक्ष रूप से सबने कृष्ण के साथ रासलीला किया है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का संग करना, इसे संभोग इच्छामयी कामानुग भक्ति कहते हैं। यह प्रत्यक्ष है, और इसके विपरीत अप्रत्यक्ष है। तत् तत् भाव इच्छात्मिका, तो इसका मतलब क्या है आगे पढ़िए।
कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते।
नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट संपर्क नहीं चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं?
अभी तो वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यवहार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं।
ठीक है ना, अप्रत्यक्ष। और वास्तव में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये अप्रत्यक्ष जो है ना कामानुग, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, उनकी सेवा करना जो कि कृष्ण के संग में है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल, ये महाप्रभु का भाव है ना, दासानुदासानुदास। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट कृष्ण का दास बन जाएंगे, नहीं। हाँ, तो आगे पढ़िए। अभी उन्होंने बताया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के कामानुग हैं प्रेम, रागानुग भक्ति। तो अब ये कामानुग भक्ति के लिए योग्यता क्या है, कौन प्राप्त कर सकता है इस कामानुग भक्ति को। तो काम रूप और कामानुग दो अंतर अब समझ गए ना, काम रूप और कामानुग में अंतर क्या है? काम रूप जो है रागात्मिका भक्ति का एक प्रकार है और कामानुग ये रागानुग भक्ति का एक प्रकार है। तो कामानुग भक्त जो है वो काम रूप भक्त का अनुगमन करता है ना, स्पष्ट है ये बात? और संबंधानुग भक्त जो है वो संबंध रूप भक्त का अनुगमन करता है। तो अभी इस कामानुग भक्ति के लिए योग्यता क्या है ये पढ़िएगा आगे। तो यहां बताया जाता है कि जो वैदिक भक्ति करते हुए विशेष करके राधा कृष्ण की सेवा अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं, विशेष करके राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, धीरे धीरे से वो कामानुग होने के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो कामानुग की योग्यता का वर्णन यहां पे है। अब आगे चल के ये प्रश्न हो सकता है कि कामानुग भक्ति या काम रूप भक्ति जो गोलोक वृंदावन में होता है वो कौन करती है? काम रूप भक्ति गोपियां, गोपियां करती हैं, है ना? तो गोपियां कौन? स्त्रियां हैं ना। तो क्या फिर ये कामानुग भक्ति जो रागानुग भक्ति का अंश प्रकार है केवल स्त्रियां ही कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं? तो ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, पढ़िएगा। एक मिनट, तो इसका मतलब क्या है? ये शरीर क्या है? आज कोई पुरुष शरीर में है, हो सकता है पिछले जन्म वो स्त्री शरीर में था, आज जो स्त्री शरीर में है हो सकता है अगले जन्म में पुरुष शरीर में होगा। तो ये शरीर का महत्व नहीं है, भक्ति का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है। और ये जो संबंध है ये तो आध्यात्मिक है, ये तो गोलोक वृंदावन की बात है। तो चाहे यहां किसी का शरीर पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इसकी पुष्टि करने के लिए आगे पद्म पुराण की बात वो कहते हैं कि इसका संक्षेप में हम वर्णन कर रहे हैं, फिर आप इसको आगे चल के पढ़िएगा। नहीं अभी पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा कम समय में हम संक्षेप में बताएंगे, ठीक है। तो दंडक आरण्य ये आपने सुना होगा, दंडक, दंडक कौन गए थे वहां पे? दंडक के अरण्य में भगवान रामचंद्र गए थे, वहां कई साल रहे, दक्षिण की ओर जाते जाते वहां निवास करके गए। तो वहां पे कई ऋषि गण थे, उन्होंने श्री रामचंद्र को देखा और उनके मन में ये उत्कंठा हुई कि हम इनकी सेवा माधुरी रस में करना चाहते हैं। हालांकि श्री राम पुरुष हैं, ऋषि भी पुरुष शरीर में थे और वो जानते थे कि कृष्ण का रूप जो है श्री रामचंद्र से अधिक आकर्षक है, फिर भी राम के प्रति आकर्षण हो गया उनको, वो चाहते थे और वो जानते थे कि श्री रामचंद्र जो है वो एक, उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इस लीला में तो वो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। परंतु श्री राम ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, कोई उत्तर नहीं दिया, और स्वीकार किया तो आगे उनको अगले जन्म में द्वापर के अंत में गोपियों के गर्भ में जन्म लेने का अवसर मिल गया। और वो चाहते थे और कि माधुर्य रस में उनकी सेवा करें, और ये अवसर उनको प्राप्त हो गया, तो उनकी जीवन की समसिद्धि हो गई। फिर उन्होंने ब्रज में जन्म लेकर गोपियों के रूप में कृष्ण के साथ उन्होंने लीला की। तो ये कहानी, ये कथा जो है पद्म पुराण की, दंडकारण्य ऋषियों की, इससे हम क्या जान सकते हैं, किस लिए रूप गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं, किस भाव में? माधुर्य भाव में भी, माधुर्य भाव में भी एक पुरुष भी कर सकता है, जैसे दंडकारण्य के ऋषि थे, पर कृत्रिम रूप में नहीं, जैसे कि वो ये सहजी लोग करते हैं, कोई पुरुष है उसने साड़ी पहन ली, ऐसे वृंदावन में कई लोग हैं, कोई पुरुष लोग हैं वो साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं, सोचते हैं कि हम गोपी बन गए, इस प्रकार का ये नहीं, रागानुग ऐसे नहीं है, वो अंतःकरण की बात है, अंदर वो भाव का अनुशीलन करते हैं, बाहरी रूप से केवल पोशाक बदलने से कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से एक स्त्री भी हो सकता है कि वो ग्वाल बाल के साधन का अनुसरण करे, इस जन्म में स्त्री शरीर में हो सकता है वो ग्वाल बाल है, हो सकता है कोई मनुष्य शरीर में होते हुए वो कोई गाय है वहां गोलोक वृंदावन में, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भौतिक देह का महत्व नहीं है। इसलिए ये कथा रूप गोस्वामी बता रहे हैं शास्त्रों से, दंडकारण्य ऋषियों का, जो गोपियां थी वृंदावन में कृष्ण के समय, तो कई प्रकार की गोपियां थी, एक प्रकार की गोपियां वो थी जो कि कृष्ण भगवान के साथ गोलोक वृंदावन से आई अवतीर्ण होकर भगवान के साथ में लीला में शामिल होने के लिए नित्य सिद्ध है वो। दूसरे हैं जो ऋषिचारी गोपी, जैसे दंडकारण्य के ऋषियां हैं, वो आगे चल के गोपियां बन गए। फिर श्रुतिचारी गोपी, हम पहले ही थोड़े प्रार्थना पंच पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, जब उपनिषद श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं कि हम भी गोपियों की तरह आपकी सेवा करना चाहते हैं, श्रुतिचारी गोपी। तो ये अलग अलग तरह की गोपियां थी। जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं वो तो गोलोक वृंदावन से आई, बल्कि अन्य जो भी थी, जो पूर्व जन्म में उन भक्ति कर रही थी, कर रहे थे, वो साधु थे, कुछ थे, उनकी इच्छा इस जन्म में पूर्ण हो गई, उनको गोपियों का जन्म मिल गया। अच्छा, और आगे और कहा वो परकीय स्वकीय, वो है और आगे रूप गोस्वामी बताना चाह रहे हैं कि कामानुग प्रेम में या काम रूप प्रेम में भी, माधुर्य प्रेम में वही है ना, दिखाइए जरा क्या लिखा है यहां। हाँ वही है, तो परकीय भाव और स्वकीय भाव। परकीय भाव किनका है? जो विवाह के बाहर है, जो ब्रज की गोपियों का श्री कृष्ण के साथ था, वो परकीय भाव है। तो ऐसे गोपियों के प्रेम का अनुसरण करना ये परकीय कामानुग भाव है। और स्वकीय भाव, द्वारका के रानियों का अनुगमन करना, तो परकीय कामानुग भक्तों का उदाहरण हम सुन चुके हैं। कौन थे वो? दंडकारण्य के ऋषि है ना, वो गोपी बन गए, वृंदावन की गोपियां जो हैं उनका भाव परकीय है, परकीय रागात्मिका भक्ति करते हैं। तो दंडकारण्य के ऋषि, उनकी अभिलाषा थी, कामानुग थे वो भी, परंतु किस प्रकार के कामानुग भक्त थे? परकीय कामानुग भक्त। वो चाहते थे कि हम ब्रज में गोपियां बने और कृष्ण को इस प्रकार से, कृष्ण का संबंध इस प्रकार से करें। दूसरी ओर स्वकीय भक्त, स्वकीय कामानुग भक्त हैं जो कि द्वारका के महिषियों को अपना आदर्श बनाते हैं और उनके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। तो इसके बारे में आगे यहां क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, महाकूर्म पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है,
अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुरी प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधान का दृढ़ता से पालन किया, फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया।
अच्छा, कोई कुछ लिखेंगे यहाँ, परकी के नीचे उदाहरण है ना, दंडकारण्य के ऋषि, और यहाँ स्वकीय के उदाहरण अग्निदेव के पुत्र जो कि ऋषि थे। ये दंडकारण्य का उदाहरण जो है, ये कथा पद्म पुराण से है, और अग्निदेव के जो पुत्र हैं जो साधु हुए वो उदाहरण महाकूर्म पुराण से है, ठीक है। और आगे वात्सल्य या सख्य भाव, मतलब संबंध, संबंधानुगा, वह कामानुगा हम पढ़ चुके, अब संबंधानुगा तो पढ़िएगा। तो अगर हम सख्य भाव में या वात्सल्य भाव में किसी भक्त का अनुगमन करना चाहते हैं तो यहां उदाहरण दिए हुए हैं नंद महाराज, या तो फिर सख्य भाव में है सुबल आदि। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे भी दो प्रकार हैं, एक है कि हम साक्षात भगवान के पिता बनने का प्रयास करें, कि हम ही नंद महाराज बनने का प्रयास करें, या दूसरा प्रकार है कि हम नंद महाराज के पद चिन्हों में चलें, उनका अनुसरण करें। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो पहला प्रकार है वो बिल्कुल अपराध युक्त है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे कृष्ण बनना ये एक अपराध है, बनने का विचार भी होना अपराध है, उसी प्रकार से नंद महाराज होना, यशोदा मैया होना, सुबल होना, मधुमंगल हो जाना, ये भी एक अपराध है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मुझे नंद महाराज बनना है तो उसकी भक्ति जो है वो मायावाद से दूषित हो जाएगी, और मायावाद जो है वो अपराध है, अपराध युक्त है, इसलिए ऐसा कोई अपराधी व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि हमें केवल यही सोचना चाहिए कि हम नंद महाराज या कोई वरिष्ठ ब्रजवासी के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, या किसी ग्वाल बाल के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, या कृष्ण की किसी दास के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, लेकिन उस वो भक्त बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम सुबल बनना चाहते हैं, यशोदा माता बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं। तो कैसे इस भाव का अनुशीलन करना चाहिए, इसके बारे में स्कंद पुराण की एक कथा है, पढ़िएगा स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो एक वृद्ध आदमी थे हस्तिनापुर में, वो वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे, तो नारद मुनि ने उनको ये आदेश नहीं दिया कि आप नंद महाराज बन जाइए, उन्होंने क्या कहा, क्या आदेश दिया उनको, उनके चरण चिन्हों में चलिए, नंद महाराज नहीं बनिए आप, नंद महाराज के चरण चिन्हों में आप चलिए, अनुसरण कीजिए नंद महाराज का। और ऐसा करके सफलता को प्राप्त की उस वृद्ध ने, व्यक्ति ने। अच्छा आगे क्या है, नारायण व्यूह स्तव में क्या कहा गया है, पुष्टि मार्ग क्यों कहते हैं इस मार्ग को, पोषण होता है। क्यों पोषण होता है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से राग, एक स्वाभाविक भाव है, रागानु का भाव है ये। हालांकि गुजरात में वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग जो है वो विशेष करके बाल गोपाल की उपासना करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा गोवर्धन उनके लिए बहुत प्रिय है, वृंदावन से ज्यादा वो गोवर्धन पसंद करते हैं, क्योंकि वहां कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था और वहां पे गोपाल जी पहले हुआ करते थे, तो गुजरात से कई लोग वहां जाते हैं ज्यादा, क्योंकि वो पुष्टि मार्गी होते हैं। तो इसके साथ अभी रागानुगा भक्ति की चर्चा हुई समाप्त, और आगे केवल भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। 17, 18, 19 तीन ही अध्याय है ना, लेकिन ये हो जाएगा जल्दी। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप बताइए, हमने चार्ट बना के दिया था आपको। अच्छा, सिद्ध साध्य भक्ति, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, दो प्रकार के भक्ति, उत्तम भक्ति। कोई लिखेंगे आप, कोई लिख के बताएंगे, भक्ति के कितने प्रकार हैं, कितने स्तर हैं। पहले है साधन भक्ति, दूसरा साध्य भक्ति, है ना। साधन भक्ति के कितने स्तर हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, और साध्य भक्ति के भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। विशेष करके पहले के पांच और अंत में जो दो तीन हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष करके पहले के पांच, क्योंकि उसमें सारे बुनियाद तो उसमें है, सब भक्ति की बुनियाद उसमें है। साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि, रागानुगा भाव और प्रेमा भक्ति, और सबसे ऊंचा कौन सा है, प्रेमा, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे वैधि, ठीक है। वो तीन तरीके जो बताए, साधन भक्ति के पद्धति क्या है बताए ना, तीन तरह के। रागानुगा भक्ति की चर्चा जब हुई थी पहले चर्चा किया कि योग्यता क्या होनी चाहिए रागनों के साधन के लिए। लोभ होना चाहिए, वो उसकी सेवा लोभ पे आधारित होती है, शास्त्रों पे और युक्ति पर नहीं होती है। तीसरी बात कि भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए, ये योग्यता है रागानुग साधन करने के लिए। फिर रागानुग भक्ति की पद्धति का वर्णन किया गया था कि जो हमारा भाव है उस प्रकार से हम एक भक्त को चुनते हैं, उनके उनका स्मरण करते हैं, साथ साथ जो उपयुक्त भगवान का रूप है उनका भी स्मरण करते हैं और ब्रज में निवास करते हैं या तो फिर मन में ब्रज में निवास करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। दूसरी बात क्या है बताइए, भले हम आगे बढ़ जाते हैं अपने साधक रूप में, हम नवदीक्षित भक्ति की तेरा सेवा करते हैं और अपने सिद्ध रूप में अंदर उस रागात्मक भक्त के का अनुसरण करते हैं अंदर से। और तीसरी बात क्या है कि जो भी 64 अंग हैं विधि भक्ति के, वैधि भक्ति के, उनको भी हम अपनाते हैं, विशेष करके उन अंगों को स्वीकार करते हैं जो हमारे साधन के लिए अनुकूल है। तो इन्हीं तीन चीजों को इन्होंने भी किया, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, अगली क्लास मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार पूरा समाप्त कर लूं एक क्लास में। अभी आपकी क्लास समाप्त हो गए ना, कल हो जाएगी। अच्छा, तो 2 तारीख को मिले। हाँ, 2 तारीख को 3 से 6 समाप्त कर लेंगे फिर। आपके लिए ठीक है। हाँ? बहुत सब तो वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काफी गहराई में बात जाती है ना, इससे ज्यादा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पहले बुनियाद है उसको हमें मजबूत होना चाहिए उसमें। वृंदावन का भाव का अनुशीलन जो करेंगे वही वो लोग को प्राप्त करेंगे, अन्य सब वैकुंठ लोगों को प्राप्त करेंगे। वृंदावन के भाव में, अदिति और कश्यप में चाहा, वामन देव का भाव वृंदावन का भाव नहीं है, वैकुंठ लोक का भाव है, तो वो वैकुंठ लोक में प्राप्त कर लेंगे अपना अपनी अगति। पर गोलोक में जहां जाना है तो केवल नंद महाराज यशोदा मैया का भाव का अनुशीलन करना, देवकी और वसुदेव का भी नहीं, वो मथुरा का भाव है, क्योंकि देवकी और वसुदेव के मन में भी ये विचार था कि मेरा बच्चा भगवान है, परंतु यशोदा माता और नंद महाराज के मन में ये विचार बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हरे कृष्णा। आज काफी भारी दिन हुआ आपके लिए है?